ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान राम की कथा को कह रहे हैं, पिछले रविवार को प्रारंभ किया था, तो उनको प्रणाम करेंगे और इस कथा को आगे कहेंगे। कृपया सब लोग दोहराइए। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम और श्रीमती सीता देवी को, श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को, साथ ही साथ भगवान श्री राम के परम मित्र श्री सुग्रीव जी को और उनके परम भक्त वायुपुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। पिछली बार चर्चा कर रहे थे अरण्य कांड की। रामायण में बाल कांड से प्रारंभ होकर कई पर्व या हरेक कांड में कई पर्व या अध्याय हैं, तो ऐसे ये अरण्य कांड है। जब भगवान वन में भीतर प्रवेश करते हैं, उसके पहले अयोध्या कांड भी हो चुका है कि कैसे भगवान को वनवास हुआ। तो अरण्य कांड की चर्चा पिछले रविवार से प्रारंभ की थी। हम लोगों ने सुना कि कैसे जब भरत आए मिलने चित्रकूट में, उसके बाद फिर भगवान ने सोचा भी यहां नहीं रहना चाहिए, तो फिर वे और अंदर की ओर वन में जाने लगे और देवी अनुसुईया से मिले। अनुसुईया की कथा हम लोग पिछली बार सुन चुके हैं। उसके बाद शूर्पनखा की कथा को प्रारंभ किया था कि कैसे शूर्पनखा भगवान श्री रामचंद्र के पास आई, उनसे विवाह करना चाहती थी, भगवान ने मना कर दिया, लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिए और शूर्पनखा क्रोध में आकर अपने भाइयों के पास गई, खर और दूषण, और खर ने भगवान पर आक्रमण करना चाहा। भगवान ने उनको उनके राक्षसों समेत समाप्त कर दिया, 14,000 राक्षस, और उन 14,000 राक्षसों को भगवान ने समाप्त कर दिया। और ये समाचार लेकर अकंपन, जो उनके एक सेनापति थे, रावण के पास पहुंचे, रावण को बतलाया। रावण ने तुरंत कहा, मैं अभी जाता हूं, मार डालता हूं, कौन है ये राम। तो उन्होंने कहा नहीं आप मार नहीं सकोगे, बहुत शक्तिशाली है, आप उनकी पत्नी को उठा लो, बस वो मर जाएगा अपने आप। तो मारीच के पास गए, मारीच ने समझाया कि अरे मूर्ख किसने ये सलाह दे दी तुम्हें कि जाकर रामचंद्र जी के विरोध करो, पत्नी को उठा लाओ, जरूर तुम्हारा कोई शत्रु है, वापस चले जाओ। लेकिन माने नहीं रावण, क्योंकि रावण के तो मन में था कि बस सीता को लेना है। फिर समझाया और फिर रावण को समझ में आ गया। तो मारीच ने कहा कि ये तो तुम एक अग्नि में आग हाग डाल रहे हो, रामचंद्र जी समुद्र के समान हैं और उनके जो बाण है, जो उनका तुनीर है, उनके जो धनुष है, वो खत्म कर देने वाले बड़े बड़े प्राणियों की तरह हैं जो समुद्र में रहते हैं, तो इसलिए तुम ये सब नहीं करो। तो रावण समझ गए, रावण वापस चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, सीता का हरण नहीं करेंगे। अब जब वापस चले गए तब शूर्पणखा आए। शूर्पणखा को पता चला कि रावण तो हरण नहीं करने वाले हैं, तो अब शूर्पणखा ने आकर रावण के हृदय में काम वासना को जागृत किया। शूर्पणखा ने कहा कि मैं वहां अपने लिए नहीं गई थी, मैं तो आपके लिए गई थी। सीता इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि केवल आप ही एक योग्य पति हैं उसके लिए। वो राम मनुष्य, साधारण मनुष्य, उसके पास इतनी सुंदर स्त्री नहीं होनी चाहिए, आप ही एक ही योग्य व्यक्ति हैं। और उसकी सुंदरता का वर्णन किया कि कैसे सीता बहुत सुंदर है। सुन सुनकर रावण के हृदय की काम वासना जागने लगी, भड़कने लगी। ऐसा नहीं था कि रावण के पास सुंदर पत्नियां नहीं थी, रावण की पत्नियां बहुत सुंदर थी। ऐसे कहते हैं कि रावण की प्रायः हर योनि से एक पत्नी थी, यानी 84 लाख योनियां होती हैं, तो 84 लाख में से 4 लाख मनुष्य होते हैं, लेकिन अलग अलग योनियों से करीब 10,000 पत्नियां थी रावण की। जहां जाता था स्त्रियों को उठा लाता था। ये रावण का आनंद लेने का मार्ग था। तो रावण के काम वासना को भड़का दिया और रावण तैयार हो गया कि सीता का हरण करना। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि आधुनिक जगत में भी आज भी शूर्पणखा है। ऐसा नहीं है कि शूर्पणखा चली गई है। दुर्भाग्य की बात है कि उस समय केवल एक शूर्पणखा थी, आज के समय में कई शूर्पणखाएं हैं। हमारा बॉलीवुड, हमारा हॉलीवुड, हमारा टीवी, हमारा इंटरनेट, ये कोई शूर्पणखा से कम है? ये भी वही काम करता है जो शूर्पणखा ने रावण के हृदय में किया। क्या किया था शूर्पणखा ने रावण के हृदय में? काम वासना को इतना तीव्र कर दिया कि रावण अंधा हो गया। अभी अभी मारीच ने समझाया था कि ये नहीं करना, भूल गया। क्यों? काम वासना इतनी तीव्र हो गई। तो ये जो आधुनिक जगत में जो शूर्पणखाएं हैं, ये भी यही कार्य करती हैं। केवल व्यक्ति के हृदय में काम वासना को इतना तीव्र कर देती हैं कि फिर व्यक्ति गलत कार्य करने से रुकता नहीं है, कोई रोक नहीं पाता। जैसे रावण को अच्छी सलाह रोक नहीं पाई, रावण को भय मृत्यु का नहीं रोक पाया। आप सोचिए, मारीच ने कहा था कि रावण मर जाओगे, मार डालेंगे। अकंपन ने कहा था, अकंपन तो उसका जरा सा सेनापति था, अकंपन ने कहा कि नहीं आप मत जाइए, रामचंद्र जी मार डालेंगे। उस व्यक्ति को मृत्यु का भय चला गया, इतनी तीव्र काम वासना हो गई। तो केवल भय से काम वासना समाप्त नहीं होती है। जैसे आजकल के समाज में हम देखते हैं कि कई कानून बने हुए हैं। कानून है कि कोई किसी स्त्री के साथ गलत कार्य नहीं कर सकता, करेगा तो उसको दंड मिलेगा। लेकिन कितने लोग सुनते हैं उसको? कितने सारे, अगर आप अखबार उठाकर देखिए तो रोज अखबार में कहीं ना कहीं ये बातें हैं, और कई बार तो बातें आती नहीं। सन 2000 में बेंगलोर में एक सर्वे किया गया था, तो वहां पर कितने सारे लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, आप जानते नहीं हैं। ऐसे ऐसे देश हैं, साउथ अफ्रीका इत्यादि, 33,000 बलात्कार के केस रजिस्टर होते एक साल में, और कितने नहीं होते पता नहीं। केवल काम वासनाएं जागृत हो जाए, हृदय हृदय में भगवान की भक्ति ना होने के कारण इन वासनाओं को स्थान मिलता। और फिर आप देखिए आजकल के टीवी, आजकल की पिक्चरें, बहुत पहले जमाने में हुआ करता था जब संतोषी माता इत्यादि पिक्चरें आया करती थी, है ना। अभी तो कोई बनाता भी नहीं, और बनाएगा तो कोई देखने नहीं जाएगा, तो कौन सी पिक्चरें आज ऐसी पिक्चरें देखते हैं आप लोग जो एक परिवार के साथ बैठकर देखी नहीं जा सकती। और इसीलिए सारे समाज में दूषण फैला हुआ है। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना दिल्ली में हुई थी कुछ साल पहले, एक कॉलेज की विद्यार्थी थी जो रात को घर जा रही थी बस में, और बस में ही बस के ड्राइवर, बस में अन्य लोग, दो तीन उसके मित्र, उन्होंने मिलकर उसका बलात्कार कर दिया। और इतना घिनौना वो उन्होंने अत्याचार किया कि उसको हॉस्पिटल में वो जाना पड़ा, और बहुत सारे उसको प्रयास किया बचाने का। ये कहा गया कि वो लड़की, ऐसा आया था कि जब उसकी माता उससे मिलने आई तो वो लड़की बोल रही थी कि मैं मरना नहीं चाहती हूं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी थी, मरने वाली थी। उसको कह रही थी वो विद्यार्थी अपनी माता से, मैं मरना नहीं चाहती हूं, मैं जीना चाहती हूं, लेकिन उसको मरना पड़ा। क्या गलती थी उसकी? क्या उसकी ये गलती थी कि उसने एक स्त्री के रूप में जन्म लिया? क्या उसकी ये गलती थी कि वो भारत जैसे पुण्य स्थान में जन्म ले चुकी है? क्या गलती थी उसकी, क्यों उसे मरना पड़ा? वो बोल रही थी मैं मरना नहीं चाहती हूं, सब प्रयास कर लिया, लेकिन वो मर गई। दिल्ली में बहुत बड़ा ये बाद में हंगामा हुआ था। तो कारण क्या था? कई लोगों ने कई कारण दिए, कोई कहता था इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ। ये केवल शूर्पणखा के कारण हुआ, क्योंकि हमारा समाज शूर्पणखा को आगे आगे कर ऐसे रावणों को उत्पन्न कर रहा है जो ऐसे कृत्य करते हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं। इसीलिए उसका दोष क्या था, वो लड़की का जो जीना चाहती थी लेकिन जी नहीं पाई, उसको मरना पड़ा, उसका दोष यह था कि वो एक ऐसे समाज में रह रही है जहां ये शूर्पणखाएं काम वासना को प्रेरित करने के लिए चारों ओर से आक्रमण कर रहे हैं। क्या देखते हैं हम लोग? आप जाइए सड़कों पर, कारोबार में आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, आपको बड़ी होर्डिंग्स दिखाई नहीं देती हैं। गोवा में प्रवेश कीजिए, बाउंड्री से शुरू हो जाती हैं होर्डिंग्स, वो क्या है उसमें, क्या दिखाया जाता है? सारी ऐसी चीजें जो आपके हृदय में काम वासना को भड़काएं। सीमेंट का एड होगा, और सीमेंट के एड के साथ एक बड़ी सुंदर लड़की खड़ी होगी। सीमेंट का उससे क्या लेना देना है, राइट? सीमेंट के एड का उस स्त्री से क्या लेना देना है? क्या वो आकर आपके घर में सीमेंट लगाएगी अगर आप वो वाला सीमेंट खरीदोगे? कुछ लेना देना नहीं है, केवल उसको खड़ा किया जाता है जिससे वो आकर्षण का केंद्र बने और फिर लोग सीमेंट भी देख ले, बस। नहीं तो सीमेंट रखेंगे, कोई देखेगा नहीं। धोखा दिया जा रहा है, ये बढ़ाया जा रहा है इस चीज को। हर चीज में आप देख लीजिए, शेविंग क्रीम का ऐड होगा उसमें लड़कियां होंगी, क्यों? केवल बस आकर्षण। ये धोखा है, इसको समझिए। हम लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, हम सोचते हैं ये आनंद है, ये एंटरटेनमेंट है। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बड़े प्रायोजित तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें नरक में डाला जा रहा है, बस। और हम लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। तो ये जितने भी हम लोग, और आजकल इंटरनेट शुरू हो गया है, पहले तो नहीं था हम लोगों के समय में, अब आजकल इंटरनेट है, कहीं किसी कोने में खड़े होकर आप जो चाहें, फोन के ऊपर। हम लोग तो विश्वास भी नहीं कर सकते थे जब हम लोग छोटे थे कि फोन पर हम लोग वीडियो देखेंगे, आज तो किसी को कहो तो कौन सी बड़ी बात है। उस समय तो फोन, वो एक घर में एक कॉलोनी में एक फोन होगा, दूसरे लोगों मेरा फोन आया तो बुला लेना मुझे, वो घुमाने वाला डायल हुआ करता था, टर टक 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 टर टक 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 टक, एक जीरो अगर ज्यादा किसी नंबर में है तो घूमता ही रहता था, बड़ी तकलीफ होती। एसटीडी करना हो तो 180 मिलाते थे, फोन के सामने ऐसे बैठे रहते थे, भगवान को भी इतना ध्यान नहीं करते थे जितना उसका करते थे। फिर आएगा और 3 मिनट बाद ऑपरेटर बीच में बोलती थी, 3 मिनट हो गया आगे बढ़ाना है, तो फिर कहते थे हाँ बढ़ा दीजिए, फिर 3 मिनट के लिए बढ़ता था। लेकिन आज देखिए, लेकिन क्या क्या स्थिति हुई है, कहीं किसी कोने में खड़े होकर कुछ भी किया जा सकता। तो ये शूर्पनखाएं आज भी बहुत फैली हुई हैं, इसीलिए कानून बनाकर कुछ नहीं होने वाला। रावण को किसने, कितने लोगों ने समझाया, मृत्यु का भय रावण को रोक नहीं पाया, तो इस सरकार के कानून किसी व्यक्ति को क्या रोकेंगे गलत कार्य करने से। इसीलिए आवश्यकता है कि आध्यात्मिक जीवन को समझें, हम ये जाने कि ये जो काम वासना है ये भगवान के शुद्ध प्रेम का विकृत रूप है, बस एक एक प्रतिबिंब मात्र है। जो रस जो आनंद भगवान के प्रेम में है उसका एक छाया पड़ती है वो काम वासना हो जाती है, बस वो भी विकृत प्रतिबिंब। तो इसीलिए इससे परे जाना, इसको छोड़ना, हमें शूर्पनखा का शिकार नहीं होना। अगर जीवन में हमें शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, असली प्रगति चाहिए, तो इस शूर्पनखा को छोड़ना होगा, क्योंकि ये केवल कष्ट लाती है, केवल कष्ट। और देखिए समाज में क्या हो रहा, लोगों के व्यापक तौर पे, सामाजिक तौर पे, व्यक्तिगत तौर पर पारिवारिक जीवन टूट रहे हैं। किस लिए है? बस ये शूर्पनखाएं बढ़ रही हैं। जो लोग धन कमा रहे हैं उनको बढ़ाकर उनका धन बढ़ रहा है, लेकिन कितने सारे, जैसे हमने उदाहरण दिया दिल्ली की उस लड़की का, उसके माता पिता की क्या स्थिति हुई होगी, उसकी क्या स्थिति हुई होगी जब उसको वो सब उसको सहन करना पड़ रहा हो। लेकिन यही समाज है, इसीलिए आवश्यकता है कि हम लोग अपनी इस काम वासना को प्रेम में बदलना सीखें, सच्चे शुद्ध प्रेम में, वासनाओं में नहीं। क्योंकि जब तक वासना हृदय में है कृष्ण को देख नहीं सकते। तो ऐसे शूर्पनखा को परास्त करने के लिए आज भी आवश्यकता है लक्ष्मण की और श्री रामचंद्र की, अर्थात आध्यात्मिक मार्ग की। उसी तलवार से जैसे लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे, उसी तलवार से उसको मारना है। और भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि वो तलवार क्या है। श्रीमद् भागवत कहते हैं, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदस्तस्य को न कुरियात कथा रतिम। श्रीमद् भागवत कहते हैं कि एक ऐसी तलवार हाथ में लीजिए जिससे इनको काट डालिए, इन गांठों को, इन गांठों के रूप में हृदय में बैठी हुई हैं शूर्पनखा, इनको काटिए। और वो क्या तलवार है? यद अनुध्यासिना, भगवान का सतत स्मरण। और इसीलिए वो पूछते हैं अंत में, को न कुरियात कथा रतिम, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको भगवान की कथा में रुचि नहीं होगी। तो ये मार्ग है हमारे लिए इससे बाहर आने का। जब तक इसमें रहेंगे, इन चीजों में रहेंगे, कभी सुखी नहीं रहेंगे। सारी सुविधा होते हुए व्यक्ति दुखी रहेगा, जलेगा, क्योंकि ये वासना जलाती है, प्रेम आनंद देता है। इसीलिए इनसे परे आना चाहिए और सच्चे प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। तो ऐसे शूर्पनखा ने बहुत ज्यादा काम वासना को प्रेरित कर दिया रावण के हृदय में, और रावण फिर पहुंचे मारीच के पास दोबारा। और रावण ने मारीच से कहा कि मैंने निर्णय ले लिया है, मैं तो सीता का हरण करूंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना है। मारीच ने बहुत समझाया। वाल्मीकि रामायण में 2 अध्याय हैं जिनमें मारीच केवल समझा रहे रावण को कि रावण देखो ये ठीक नहीं, तुम जानते नहीं हो रामचंद्र जी कौन है, उनकी शक्ति को नहीं जानते हो, ये मत करो कार्य। इतना सब सुनने के बाद रावण ने कहा कि देखो या तो तुम मेरे साथ चलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मारीच ने सोचा दोनों तरफ मृत्यु है, रामचंद्र जी तो छोड़ने वाले नहीं है, वहां जाऊंगा तो वहां भी मरूंगा, और ये अगर नहीं गया तो रावण भी निश्चित मार देगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मारीच ने बहुत अच्छी बात सोची। मारीच ने सोचा कि इस असुर के हाथों मरने से अच्छा है भगवान श्री राम के हाथों मरता हूं जाके। और मारीच सोचने लगे कि वो कितना सुंदर दृश्य होगा कि जब मैं जाऊंगा श्री रामचंद्र जी के दर्शन करूंगा और फिर मैं भागूंगा और वो पीछे पीछे मेरे हाथ में धनुष बाण लेकर भाग रहे होंगे और मैं बार बार पीछे मुड़कर देखूंगा, उनके सुंदर चेहरे को देखूंगा और फिर उनके उनके दर्शन करते हुए मैं अपने देह को त्यागूंगा, मुझे मृत्यु आएगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये देखिए मारीच का भाव, और ये हम सब के लिए, ये हम चाह सकते हैं कि जब मृत्यु आए तो भगवान सामने हो, उससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है, और वो भी भगवान के हाथों होने वाली है। मारीच ने सोचा और क्या चाहिए, भगवान के हाथों मृत्यु होगी, भगवान का दर्शन करूंगा, कम से कम ये पापी असुर रावण से तो बच जाऊंगा और भगवान के धाम जाऊंगा। तो ये कह के उसने स्वीकार कर लिया, रावण के साथ चल दिया। और जब स्वीकार किया तो रावण ने कहा अब तुम ठीक हो गए हो, अब तुम प्रॉपर मारीच हो गए हो, सही, पहले तुम्हें किसी और राक्षस ने दबोच लिया था, तुम अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, नहीं जाऊंगा, अभी ठीक हो गए, चलो अभी जाएंगे। तो दोनों चल दिए और वहां पहुंचे जहां सीता देवी हैं। वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन नहीं किया गया, लेकिन अध्यात्म रामायण में वर्णन है कि भगवान रामचंद्र ने सीता देवी से कहा रावण के आने से पहले, मारीच के आने से पहले, कि देखो अब समय आया है जब रावण तुम्हारा हरण करेगा, सीता का हरण होने वाला है, तो अब समय आया है जब रावण तुम्हारा हरण करेगा, इसीलिए तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और एक मायावी सीता को यहां प्रकट करो जिसको रावण लेकर जाए। तो कई बार लोग कहते हैं कि कैसे सीता देवी को रावण स्पर्श कर सका, रावण की तो इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान की नित्य संगिनी को स्पर्श कर सके, तो उसने जिसको स्पर्श किया वो मायावी सीता थी, असली सीता नहीं गई थी। तो भगवान रामचंद्र ने कह दिया और सीता ने कहा ठीक है, तो सीता अग्नि में प्रवेश कर गई और मायावी सीता फिर वहां पर प्रकट हुई और उसके बाद फिर ये सीता हरण की लीला प्रारंभ हुई। तो सीता जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, सीता को मैथिली भी कहते हैं, जानकी कहते हैं, वैदेही कहते हैं, सीता भी कहते हैं। सीता इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उनका जन्म हुआ तो सीत से जन्म हुआ, सीत अर्थात जब हल चलाया जाता है खेतों में तो उसके आगे के भाग को सीत कहते हैं। और सीता जब मिली थी महाराज जनक को तो उस समय जनक महाराज हल चला रहे थे, यज्ञ करने वाले थे, तो यज्ञ के पहले हल चलाना होता है, तो हल चला रहे थे और वो जो हल का आगे का भाग था सीत, वो इस एक बहुत सोने का एक डब्बा था उसको लग गया, तो क्योंकि उनमें से मिली इसीलिए उनका नाम सीता हुआ। जनक की पुत्री है इसीलिए जानकी हुआ, मिथिला में रहती थी इसीलिए मैथिली हुआ, ऐसे कई नाम सीता देवी के हुए। और फिर विवाह हुआ उनका, ये सब आप जानते हैं। सीता बचपन में जब खेला करती थी, दरअसल जनक महाराज ने ऐसी शर्त क्यों रखी कि जो कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही केवल सीता से विवाह करेगा, इसका कारण था ये जो बहुत बड़ा धनुष था इसको कोई अकेला उठा नहीं सकता था, उसकी बहुत बड़ी उसको गाड़ी में रखा गया था जिसमें कई पहिए थे, 500 लोग उसको धक्का मारकर लेकर आते थे, इतना भारी था वो। दो धनुष थे ऐसे, एक शिवजी का और एक भगवान विष्णु का। दरअसल ये कब बने थे, ये इसकी कथा आती है कि एक समय इंद्र पहुंचे शिवजी के पास, तो बाहर दरवाजे पर नंदी खड़े थे। नंदी ने इंद्र से कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, मुझे शिवजी से मिलना है। नंदी ने कहा, जब भी तुम मिलने आते हो कोई ना कोई तकलीफ होती है, कुछ ना कुछ तकलीफ देके जाते हो शिवजी को, क्या बात है? बोले, नहीं, इस बार कोई ऐसा कोई असुर नहीं, कुछ नहीं। शिवजी से मिले, ऐसे ही प्रार्थना वगैरह की। शिवजी ने पूछा, मांगो, क्या मांगने आए हो? बोले, नहीं, आज तो कुछ मांगना नहीं है, बस एक इच्छा है शिवजी, अगर आप पूरी कर सके तो। क्या इच्छा है? आपको भगवान विष्णु से लड़ते हुए देखना चाहते हैं हम लोग सारे देवता। अब बताइए, ऐसी कोई इच्छा होनी चाहिए? शिवजी को जाके कह रहे हैं, जो शिवजी परम वैष्णव हैं, धीर पुरुष हैं, भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, उनसे कहे बस यही एक इच्छा। तो शिवजी ने कहा, अरे क्या कह दिया, मैं भगवान से लड़ूंगा? हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, आपने कहा था क्या मांगना, अब हमने तो अपनी इच्छा प्रकट कर दी, आपके ऊपर है। तो शिवजी बड़े धर्म संकट में हो गए कि मैंने कहा है कि दूंगा और यहां भगवान से कैसे युद्ध करूं। तो शिवजी भक्त हैं, उन्होंने स्मरण किया भगवान का और उन्हें लगा कि ठीक है, शायद भगवान की इच्छा होगी, युद्ध करना है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, विष्णु से युद्ध होगा। तो कहा, लेकिन देखो, भगवान विष्णु के पास तो ऐसे ऐसे अस्त्र हैं, उनका चक्र है, उनका धनुष है, मेरे पास क्या है? ये त्रिशूल कुछ नहीं चलता, काम नहीं करता। तो कहा कि ठीक है, वो सब नहीं, दोनों के लिए अलग अलग धनुष, एक ही प्रकार के धनुष बनेंगे दोनों के लिए, एक विष्णु के लिए और एक शिव जी के लिए। तो फिर दो धनुष बनाए गए और एक दिया गया शिव जी को एक समान और एक दिया गया विष्णु जी को। तो विष्णु जी से कहा कि अब आप लोगों को युद्ध करना। पहले तो भगवान भी सोच रहे थे कि ये क्या युद्ध करना है, खैर लेकिन देवताओं की इच्छा थी, भगवान ने भी सोचा थोड़ा आनंद ले लेते हैं। तो फिर उन दोनों धनुषों से युद्ध हुआ, शिव जी के और फिर इधर से भगवान विष्णु के, और बड़े शक्तिशाली दोनों धनुष थे और उनसे युद्ध हुआ। खैर युद्ध का परिणाम तो हम आपको बताना नहीं चाहेंगे, आप सब जानते हैं क्या हुआ होगा। शिवजी ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने जब तीर चलाने शुरू किए तो शिवजी को भागना पड़ा और शिवजी ने फिर कहा, देवताओं से, इंद्र से पहले ही कहा था मैंने, नहीं करना है, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा। तो फिर वो जो धनुष था वो शिवजी ने जनक महाराज के पूर्वजों को दिया। जनक महाराज के पूर्वज भी जनक थे। जनक दरअसल ये एक पदवी है, नाम नहीं है। सीता देवी के जो पिता थे उनका नाम कुछ और था, उनको पदवी थी जनक। ऐसे ही जितने भी राजा उनके वंश में हुए उन सबको जनक कहते थे। तो पूर्व काल में एक जनक को शिवजी ने दे दिया, तो उनके समय से वो पूजित होता हुआ आ रहा था। और भगवान विष्णु ने अपना धनुष ऋचक ऋषि को दे दिया। फिर उनसे जमदाग्नि के पास आया, जमदाग्नि ने अपने पुत्र परशुराम जी को दिया। तो ऐसे ये दो धनुष थे, तो बड़ा भारी था। तो क्यों ऐसी शर्त रखी जनक महाराज ने? एक दिन वो खेल रही थी, सीता देवी छोटी थी, बचपन में खेल रही थी, उन्हें पेड़ से फल तोड़ना था। तो उन्होंने इधर उधर देखा, कोई डंडी दिखाई नहीं दे रही थी कि किससे फल तोड़े, तो उन्होंने देखा कि ये धनुष पड़ा हुआ है। बोले, हाँ ये बढ़िया है, इससे पहुंच जाएंगे, सारे फल टूट जाएंगे। तो जिस धनुष को इतनी बड़ी गाड़ी में 500 लोग धक्का मारकर लाते थे, सीता देवी गई, उन्होंने ऐसे उठाया, आई और फल तोड़ने लगी। और जब फल तोड़ रही थी तो उनके मंत्रियों ने देखा तो वो बेहोश हो गए, क्योंकि उसको तो वो लोग हिला भी नहीं सकते थे और सीता देवी एक हाथ से ऐसे फल तोड़ रही है उससे। तो भागे भागे जनक महाराज के पास गए समाचार देने के लिए कि महाराज बड़ा गजब हो गया। महाराज वो हाँ, फिर जनक ने कहा, क्या हो गया, कोई शत्रु आ गया, क्या हुआ इतना क्यों? तो उन्होंने कहा कि सीता देवी ने धनुष उठा लिया। तो कौन सी बड़ी बात है उठा लिया? अरे वो साधारण धनुष नहीं, वो शिव जी का धनुष उठा लिया, सीता देवी ने उठा लिया, तुम पागल हो? वो विश्वास ही नहीं हुआ जनक महाराज, सीता छोटी बच्ची है। तो ऐसे दो तीन लोगों ने आके कहा, तब जनक महाराज खुद गए तो देखा तो बड़ा आश्चर्य। तो उस दिन उन्होंने ये शर्त रखी कि सीता का विवाह तो उसी से होना चाहिए, जब ये धनुष उठा लेती है तो कम से कम इसका पति तो उतना होना चाहिए ना कि वो भी धनुष उठा सके, नहीं तो पता चले ये धनुष उठा रही है, पति धनुष नहीं उठा पा रहा, क्या फायदा। तो इसलिए शर्त रखी। तो खैर उनका विवाह हुआ और उसके बाद वनवास हुआ। तो अब सीता देवी यहां पर हैं, अब उनका हरण होना है। तो रावण ने एक सन्यासी का वेश धर लिया, सन्यासी का वेश धरा, मारीच एक स्वर्ण मृग बन गया, सोने का मृग, आकर्षित करने के लिए, और वो खेलने लगा सामने ही सीता देवी के। तो सीता देवी ने मृग को देखा, बड़ा आश्चर्य, अरे सोने का मृग पहले कभी नहीं देखा, ये कैसे है? तो सीता देवी ने रामचंद्र जी को बुलाया, इधर आइए इधर आइए, मुझे वो मृग चाहिए। तो रामचंद्र जी, क्या करोगी, वन में इतने सारे मृग होते हैं, इतने सारे हिरण होते हैं, तुम हिरण लेके क्या करोगे? तो सीता देवी ने कहा, नहीं नहीं, आप उसको लेकर आइए, पकड़कर मैं यहां पर उसको रखूंगी अपने पास जब तक यहां है वन में, और फिर जब अयोध्या जाऊंगी तो फिर इसको साथ में लेके जाऊंगी और वहां अपनी सहेलियों के साथ खेलूंगी इसके साथ, बहुत सुंदर है, इसको ले आइए। वैसे कई लोग सीता देवी के विशेष करके इस प्रसंग पे कि जहां सीता देवी ने मृग को लाने के लिए कहा, टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि सीता देवी ने मृग को इसलिए लाने के लिए कहा रामचंद्र जी से कि उसको काट कर बनाएंगे, थोड़ा आप खाना थोड़ा मैं खाऊंगी। ये गलत धारणा है, लोग कहते हैं ना, हम लोगों को हंसी आती है, लेकिन लोग कहते हैं इसको। दो जगह का प्रमाण वो देते हैं ये कहने के लिए कि रामचंद्र जी ने मांस खाया, आपको क्या तकलीफ है, आप उनके भक्त हैं ना, तो जब रामचंद्र जी खा सकते हैं आप क्यों नहीं खाते। तो पहला उदाहरण वो ये देते हैं कि देखो सीता ने कहा, नहीं तो क्या जरूरत है उसको हिरण की, सीता ने कहा लेकर आओ बनाकर खाएंगे, सीता ने कभी ये नहीं कहा, उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है। सीता ने बड़ा स्पष्ट कहा कि यही नहीं मैं अयोध्या लेके जाऊंगी खेलूंगी, मारने की बात ही नहीं कही, तो इसीलिए सीता ने कहा पकड़कर। दूसरी बात जहां ये लोग कहते हैं कि भगवान राम ने मांस खाए, ये आगे सुंदरकांड में आती है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी पहुंचे सीता देवी के पास, अपना परिचय दे दिया, सीता देवी ने पहला प्रश्न किया रामचंद्र जी कैसे हैं, तो उसका उत्तर देने में हनुमान जी कहते हैं कि रामचंद्र जी ने आपके विरह में कंदमूल खाना छोड़ दिया है और मांस तो राघव ने खाया ही नहीं, ये उन्होंने कहा। तो लोग उस श्लोक को लेते हैं और उसका अनुवाद इस तरह करते हैं कि देखिए हनुमान जी कह रहे हैं सीता देवी से कि भगवान राम ने आपके विरह में कंदमूल खाना और मांस खाना छोड़ दिया, मतलब पहले खाते थे, सरल है ना, भाई आपके विरह में छोड़ा है मतलब पहले खाते थे। तो लोग कहते देखो हनुमान जी कह रहे हैं, आपके महान भक्त रामचंद्र जी जिसको आप भक्त मानते हो, वो कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने खाना छोड़ दिया आपके विरह में, मतलब पहले खाते थे। ये गलत अनुवाद है, रामायण एक काव्य है, काव्य मतलब इसको कविता की तरह कहा जा गया है। तो जब हनुमान जी दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि आपके विरह में वो उपवास रखे हुए हैं, लेकिन इसको कहने में उन्होंने कहा कि आपके विरह में उन्होंने कंदमूल खाना छोड़ दिया है और मांस तो राघव ने, राघव मतलब रघुकुल के किसी व्यक्ति ने नहीं खाया, रामचंद्र जी की बात नहीं, राघव ने कभी नहीं खाया। तो क्यों कह रहे मांस की बात क्यों की हनुमान जी ने, क्योंकि वन में दो ही चीजें मिलती हैं खाने के लिए, एक कंदमूल कुछ तोड़ बोड़ कर खाना या फिर प्राणी को मार के खाना, बड़ा सरल है, और तीसरी चीज क्या मिलती है वन में, लकड़ियां तो खा नहीं सकते आदमी, खाने लायक तो दो ही चीजें हैं वहां पर। तो हनुमान जी ये कहना चाह रहे थे कि आपके विरह में भगवान ने उपवास रखा हुआ है, कुछ नहीं खा रहे, तो ये कहने के लिए उन्होंने कहा। तो इसको दूसरे को लोग कहते कि देखो हनुमान जी ने कहा। तो खैर सीता देवी ने जब मृग को देखा तो वह आकर्षित हो गई। अब यहां पर हम लोग भक्ति की दृष्टि से इस पूरे सीता हरण के प्रसंग को समझने का प्रयास करें। सीता ये वो जीव का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अब भगवान से दूर होने वाले हैं, या उस जीव का जो इस भौतिक जगत में है, जो ये मारीच जो एक राक्षस है लेकिन उसने एक बहुत स्वर्ण मृग का रूप लिया हुआ है, उससे आकर्षित हो गए हम सब। हम सब इस जगत की चमक दमक से बड़े आकर्षित हो जाते हैं, उसके पीछे छुपे हुए उस असुर को नहीं देख पाते जो हमें कृष्ण से दूर ले जा रहा है। ये जान लीजिए कि असुर मतलब केवल वो नहीं है जिसके बड़े बड़े सींग हों, चार पांच बड़े बड़े लंबे दांत हों, काला भयंकर हो, हाथ में रस्सी, वो ही असुर नहीं है। हर वो व्यक्ति असुर है जो हमें भगवान से दूर ले जा रहा है। सरल परिभाषा है असुर की, हर वो व्यक्ति। तो जिस तरह सीता देवी आकर्षित हुई इस सोने के मृग से, उसी तरह हम आकर्षित हो जाते हैं इस भौतिक जगत से। और फिर सीता देवी ने भगवान का संग त्याग दिया, भगवान से कहा आप जाइए जाइए लेकर आइए। तो जीव भी जब बहुत ज्यादा भौतिकता में फंस जाता है भगवान को भूल जाता है। तो सीता देवी ने रामचंद्र जी से कहा, लक्ष्मण ने देखा, अब रामचंद्र जी तो जानते थे मारीच है, उन्होंने पहले सीता देवी को कह दिया था, वो अपना रूप बदल चुकी थी, मायावी सीता थी। लेकिन लक्ष्मण ने देखा और लक्ष्मण ने कहा ये ऐसे मृग होते ही नहीं है। लक्ष्मण तो एकदम क्रोध में, रामचंद्र जी का आप जाना नहीं, ऐसे मृग होते नहीं है, ये मुझे लगता है मारीच है या कोई और असुर है जिसने रूप लिया है। तो भगवान रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि देखो अगर ये मृग है सही में तो फिर मैं इसे पकड़कर लेकर आ जाऊंगा तो अच्छा होगा, सीता प्रसन्न होगी, और अगर ये असुर है तो मैं इसको मार कर आऊंगा। दोनों काम करने हैं ना, या तो पकड़ कर लाऊंगा या इसको मार कर ले आऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो लक्ष्मण से कहा तुम यहीं रहना, सीता की रक्षा करना और मैं जा रहा हूं हिरण को पकड़ने। भगवान राम चले गए। अब जब हिरण भागने लगा और हिरण इतनी तेजी से भाग रहा था, पहले तो भागता रहा, भगवान राम पीछे पीछे भाग रहे हैं, फिर उसने अपनी मायावी शक्ति दिखानी शुरू की, कभी अचानक प्रकट हो जाता, कभी गायब हो जाता, कभी एक पेड़ के पीछे दिखता, कभी दूसरे पेड़ के पीछे दिखता। तो जब श्री रामचंद्र ने ऐसा देखा तब उन, और बहुत दूर तक ले गया, भगाते भगाते बड़े दूर तक ले गया, और जब श्री रामचंद्र ने ऐसा देखा तो वे जान गए कि ये तो कोई असुर है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता, अचानक गायब हो जाता है, फिर प्रकट होता है, फिर गायब हो जाता है। तो रामचंद्र जी ने फिर कहा अब इसको मारना है, उन्होंने तीर निकाला और वर्णन है कि मारीच ने बड़े सुंदर दर्शन किए भगवान के, और फिर भगवान ने तीर चलाया, मारीच मृत्यु को प्राप्त हुआ। और मरते समय जैसे रावण को उसने वचन दिया था, वो जोर से भगवान राम की आवाज में चिल्लाया, इतनी जोर से चिल्लाया कि सीता तक पहुंचे वो आवाज, और पुकारने लगा लक्ष्मण को, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण मैं मर रहा हूं मुझे बचाओ, और मर गए। सारे जितने देवता थे वो ऊपर आकर पुष्प की वर्षा करने लगे, वो कहने लगे, देवता आपस में बात करने लगे कि अरे जिनका नाम लेने मात्र से मृत्यु के समय व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उनके द्वारा मारा गया, उनके दर्शन करते हुए ये मरा है, कितना भाग्य है इसका, ऐसी मृत्यु हम सब चाहते हैं, देवता कहने लगे। तो देखिए कभी कभी हम लोग मरने से डरते हैं ना, मरना नहीं चाहिए, हर व्यक्ति मरने से डरता है, बाकी कोई भी डर ठीक है, लेकिन जब मरने की बात आती है तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, अपना धन अपना पैसा सब ले जाओ। लेकिन मृत्यु वो है, असली मृत्यु या सही मृत्यु वो है जहां हम भगवान का स्मरण करके इस देह को त्यागें। भगवद्गीता में भी भगवान कहते हैं अंत काले चमामे व स्मरण मुक्तवा कले वरम, अंत काल में जो मेरा स्मरण करके अपना ये कलेवर अपना ये देह त्यागता है वो निश्चित मुझे प्राप्त करता है, ऐसी बात भगवान ने भगवत गीता में कही। तो यहां मारीच के ऊपर देवता मानो द्वेष करने लगे कि अरे ऐसी मृत्यु, भगवान ने सीधे उसको तीर मारा, भगवान के दर्शन करते हुए वो मरा है। तो खैर वो मर गया। और इधर जब लक्ष्मण ने ये सुना और सीता देवी ने सुना भगवान की आवाज, रामचंद्र जी की आवाज, तो सीता देवी स्वाभाविक है विचलित हो गई, उन्होंने लक्ष्मण से कहा तुरंत जाओ रक्षा करो। लक्ष्मण ने कहा कुछ होने वाला नहीं है, अब आराम से बैठे रहो। अरे किसकी बात कर रहे हो, किसको मारने की, किसके मरने की बात कर रहे हो? बड़े बड़े देवता जिनके सामने प्रणाम करते हैं, क्या उनको कोई ये साधारण ये असुर मार सकता है? आप चिंता मत करो, कुछ नहीं है, ये सब माया जाल है। सीता देवी को बड़ा क्रोध आ गया। आप सोचिए, पत्नी के लिए, उसके पति कठिनाई में है, पुकार रहे हैं, और जो व्यक्ति मदद कर सकता है वो कहता है कुछ होने वाला नहीं, शांत बैठे, कुछ नहीं हुआ। तो और चिंता में आ गई सीता देवी, कहने लगी कि अरे आज मुझे पता चला तुम क्यों हमारे साथ आए हो, तुम्हें भरत ने भेजा है। तुम्हें भरत ने भेजा है, वो चाहता था कि जब समय मिले तुम रामचंद्र जी को मार लो, और साथ साथ तुम्हारी इच्छा है मेरे साथ भोग करने की। देखिए क्या क्या नहीं कह दिया लक्ष्मण को। वो लक्ष्मण जिसने कभी सीता देवी के पांव के ऊपर नहीं देखा था, केवल चरणों से ऊपर उसकी कभी नजर नहीं गई थी सीता देवी की, ये प्रमाण दिया। जिस समय सीता को ढूंढते हुए सुग्रीव के पास पहुंचे रामचंद्र जी, सुग्रीव ने कहा हाँ एक स्त्री को लेके जा रहे थे और स्त्री चिल्ला रही थी और उसने ये गहने फेंके हैं, देखिए उसी के हैं क्या? तो श्री रामचंद्र जी ने गहने देखे, हार देखा, हाँ ये सीता का हार है, कर्ण फूल देखे, कर्ण फूल भी सीता के हैं। लक्ष्मण जी को दिखाया कि देखो ये कान के फूल, ये सीता के ही है ना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं क्षमा चाहता हूं, मैं नहीं जानता सीता के हैं कि नहीं, मैं तो केवल ये पायल जानता हूं क्योंकि मैंने पांव के ऊपर कभी देखा ही नहीं चरणों के ऊपर, तो केवल पायल को जानता हूं कि पायल उनकी है। तो जिस लक्ष्मण ने इस भाव में, अपनी मां के भाव में सेवा की हो, जिस लक्ष्मण को सुमित्रा ने कहा था जब वो जा रहे थे वनवास में कि आज से रामचंद्र तुम्हारे लिए दशरथ हैं और सीता सुमित्रा है, उस लक्ष्मण को सीता देवी कहती हैं कि तुम मेरे साथ भोग करना चाहते हो, इसीलिए रामचंद्र जी की मृत्यु चाहते हो तुम। लक्ष्मण से सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण ने कहा आप ऐसी बातें मत कहिए, आप माता हैं, आप कैसे ये बातें कह सकती हैं? सीता देवी ने कहा यही तुम्हारा भाव है, इसीलिए तुम जा नहीं रहे हो। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है मैं जाता हूं, अगर आपको यही लगता है तो मैं जाता हूं। तो लक्ष्मण वहां से चले गए। कुछ स्थानों पर ये वर्णन है कि लक्ष्मण ने एक रेखा खींची, वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है, आध्यात्म रामायण में भी ये वर्णन नहीं है, कुछ स्थानों पर है कि लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी, जिसे बड़ी प्रसिद्ध लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जिसको कोई पार नहीं कर सकता। तो अगर खींची भी, मान लीजिए अगर लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची, तो ये लक्ष्मण रेखा क्या है? ये लक्ष्मण रेखा भक्तों का संग है। जब हम इस संग से परे चले जाते हैं, कब? जैसे अभी अभी हम देखिए कि लक्ष्मण जी हैं, कितना शुद्ध भाव था उनका, सीता देवी को अपनी माता की तरह उनकी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा। कभी कभी भक्तों के साथ ऐसा होता है, भक्त बड़ी अच्छी सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनको गलत समझा जाता है, उन्होंने गलत समझा सीता देवी ने। लेकिन अगर, और ये एक बात का एक आचार्य कहते हैं कि सीता का हरण इसलिए हुआ क्योंकि सीता ने लक्ष्मण जैसे भक्त के प्रति अपराध किया, उनको गलत समझा, ये सोचा कि ये मेरे साथ भोग करना चाहता है, इसकी इच्छा ये है, और इसीलिए उनको इतने कष्ट सहने पड़े रावण की लंका में। अभी ये जो पूरा प्रसंग है बहुत सुंदर है भक्ति की दृष्टि से। सीता को अभी हमने जीव की दृष्टि से देखा है, अभी थोड़े समय में जब हरण होगा तो सीता को भक्ति की दृष्टि से देखेंगे कि कैसे वे लोग जो रावण की तरह हैं हमारे हृदय से भक्ति को उठा ले जाते हैं, और कहां ले जाते हैं? अपनी लंका में, भौतिक जगत में। तो सीता देवी ने यह कह दिया, लक्ष्मण चले गए बड़े दुखी होकर। वे जानते थे कि रामचंद्र जी को कुछ नहीं हो सकता, जैसे बलराम जी जानते थे जिस समय श्री कृष्ण ने कालिया दमन लीला की, तो कालिया दमन लीला में ऐसा हुआ कि कृष्ण कूद गए कालिया को मारने के लिए। अब कालिया, उसने इतना जहर फैला रखा था अपना कि ऐसा वर्णन है कि अगर ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ता था तो मर के गिर जाता था, इतना जहर फैला हुआ था। और जब बॉल उनकी खेलते खेलते गेंद अंदर चली गई तो श्री कृष्ण कूद गए और कूद गए तो एकदम अंदर चले गए क्योंकि कालिया बहुत नीचे था। जितने मित्र थे उन्होंने देखा वो सब रोने लगे, अरे अरे क्या हो, कृष्ण चला गया, कृष्ण चला गया। कालिया जिसके विष के प्रभाव से ऊपर उड़ने वाला पक्षी मरकर गिर जाता है उसमें अंदर चले गए हैं श्री कृष्ण, क्या होगा। सूचना पहुंची गोकुल में, वहां से भागे हुए आए नंद महाराज, गोप अन्य गोप ग्वाले सब, यशोदा मैया भागती हुई आई, तट पर आई यमुना के, क्या हुआ, कहां है कृष्ण, वो तो अंदर चला गया, कालिया खा गया होगा हमको। यशोदा मैया बेहोश, सारे लोग बेहोश हो रहे हैं, एक ही व्यक्ति आराम से खड़े थे, बलराम जी। बलराम जी तो कुछ होने वाला नहीं, मैं जानता हूं कृष्ण को कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि पता था कृष्ण को कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो आराम से खड़े थे। बाकी सारे दुखी, उल्टा वो कभी कभी संभाल रहे थे, पिताजी को बोल रहे थे अपने नंद महाराज को, कुछ नहीं होने वाला, शांत रहो, अभी आ जाएगा, अभी आएगा, देखो थोड़ी देर में आए। लेकिन कोई सुनने तैयार नहीं, कौन सुनेगा इस समय में, जहरीले नाक के पास चला गया हमारा बेटा और दूसरा बेटा कह रहा है कुछ नहीं होने वाला, इसको क्या पता, ये भी तो बच्चा है। तो बलराम जी बड़े आराम से थे, कुछ होने वाला नहीं। तो इसी तरह लक्ष्मण जी को पता था कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इतना जब कह दिया तो उनसे सहन नहीं हुआ, चले गए। तो यहां जब अब रावण ने देखा कि अब मैदान साफ है, रामचंद्र जी चले गए, लक्ष्मण चले गए और बहुत दूर चले गए थे, जब तक वो वापस आए, वहां जब रामचंद्र जी ने यह सुना कि मरते मरते इसने मेरी आवाज में लक्ष्मण को पुकार लिया है, तो रामचंद्र जी को समझ में आ गए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलत होने वाला है, तो वो जल्दी जल्दी वापस आने लगे। अब यहां पे प्रश्न आता है, वो तो भगवान है, जल्दी नहीं आ सकते थे टाइम पे, इंडियन पुलिस थोड़ी है कि वो सब कुछ होने के बाद आते हैं, है ना, तो क्यों नहीं टाइम पे आए। समा कीजिए इंडियन पुलिस कह दिया आप लोगों को कुछ हर्ट हो जाएगा, कोई भी पुलिस चलिए, बाहर की पुलिस, अमेरिकन पुलिस ले लेते हैं। तो रामचंद्र जी जल्दी क्यों नहीं आए, वो तो सर्वव्यापी हैं, वहां से गायब होते यहां पर प्रकट हो जाते, कितना समय लगता उनको, तो क्यों नहीं आए वहां पर जल्दी जल्दी। तब गरुड़ को क्यों नहीं बुला लिया उन्होंने, गरुड़ उनका रथ है सारथी, जल्दी बुला लेते चले जाते, वैसे तो बुला लेते हैं, जब गजेंद्र ने पुकारा तब तो गरुड़ पर चढ़कर आ गए, और इतना चढ़कर आए कि गरुड़ को बोल रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो, और गरुड़ बेचारा कितना करेगा, मार रहा था पंख अपने, उसकी भी तो कैपेसिटी, जितना फ्यूल डाला होगा उतना ही चलेगा, भाग रहा है भाग रहा है। तो भगवान को और गुस्सा आ गया कि बड़ा धीरे भाग रहा है, तो उसको बोला तुम रुको, उनको अपने कंधे पर बिठाया, खुद भागने लगे, बोले मैं तेज भागता तो अब क्यों नहीं आए, अब क्यों उनको इतना समय लगा जंगल से आने के लिए। तो यही कारण है कि भगवान मानव की लीला कर रहे हैं, जब एक साधारण मानव की लीला करते तो मानव की तरह, नहीं तो कई बार लोग कहते हैं अच्छा भगवान है तो उन्हें पता नहीं था कि उनकी पत्नी का हरण होगा, वो चले क्यों गए। अब ऐसे अगर देखें तो भगवान को तो पैदा होते ही पता था सब क्या होना है, तो फिर तो लीला होती ही नहीं, रामलीला कहां से होती, उनको तो सब पता था कि मुझे बाहर निकालेंगे, 14 वर्ष वनवास जाना पड़ेगा, ये तो सब पता था। तो भगवान जब लीला करते हैं मानव की तो उस लीला के अनुसार कार्य करते हैं, और इसका प्रमाण हम कई बार इस कथा को कह चुके हैं। पार्वती देवी ने यह प्रश्न कर लिया था, सती देवी क्षमा कीजिए, पार्वती सती देवी ने यह प्रश्न कर लिया था कि शिवजी से, ये कैसे भगवान है तुम्हारे, आप बोलते हो कि भगवान है मेरे आराध्य देव है। शिवजी एक बार देखा, सती देवी ने, रामचंद्र जी लीला कर रहे हैं और शिवजी ऊपर से प्रणाम कर रहे हैं उनको, एक साधारण मानव पता भी नहीं कि अपनी पत्नी कहां है, कौन उठाकर ले गया, तो उसको शिवजी प्रणाम कर रहे तो उन्होंने पूछ लिया इसको क्यों आप प्रणाम कर रहे हो, कौन है ये, भगवान है, कैसे भगवान है, ये भी नहीं पता कि पत्नी कहां है, पेड़ों से पूछ रहे हैं हा सीता कहां है, ढूंढेंगे उनको, जिनको खुद की पत्नी नहीं पता वो सारे कैसे भगवान हो सकते बताइए। अरे भगवान है तो सबका पता होना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग कई बार कहते हैं कि इस जगत में भी कई लोग भगवान बनते हैं, दांत में दर्द होता है डॉक्टर के पास भागते हैं लेकिन अपने आप को भगवान कहते हैं। तो पार्वती ऐसी सती देवी ने कहा कैसे भगवान है, तो लीला कर रहे हैं, है भगवान सब जानते हैं, उसको विश्वास नहीं हुआ, बोले मैं जरा जाकर आती हूं, मैं उनके दर्शन करके आती हूं। शिव जी ने कहा, शिव जी जान गए कि हृदय में कुछ संशय है, परीक्षा लेगी। देखो परीक्षा नहीं लेना, मेरे भगवान है वो, मेरे आराध्य देव हैं। ये स्वाभाविक है, शिव जी के आराध्य उनकी परीक्षा कैसे सती ले सके। सती ने कहा नहीं नहीं कोई परीक्षा नहीं, बस दर्शन करके आती हूं। ठीक है, सती नीचे गई, उन्होंने सोचा अब दिखाती हूं। तो उन्होंने सीता का रूप ले लिया, जैसी सीता थी अपहरण के समय, सीता का रूप ले लिया, सामने आ गई। सामने आई और रामचंद्र जी ढूंढते हुए आ रहे हैं, राम और लक्ष्मण, हा सीता हा सीता, सीता कहाँ है, सीता तुमने देखा, सीता पक्षियों को पूछ रहे हैं, पेड़ों को पूछ रहे हैं, और यहां सामने सीता खड़ी है। तो स्वाभाविक है, सती देवी सोच रही थी आए थे गले लगाएंगे, सीता तुम कहां गई थी, तुम आ गई। भगवान राम सामने आए, हाथ जोड़े और उनसे पूछे, देवी आप अकेली आई हैं, शिव जी नहीं आए? वो इधर उधर देखने लगी, किसको बोल रहे हैं, मुझे ही बोल रहे हैं ना, आपको ही बोल रहा हूं। तो वो सारे पानी पानी हो गए, पूरा जो वेश बनाया था सीता देवी का वो सब चला गया। तो वहां भगवान ने दिखलाया कि मैं जानता हूं सब, लेकिन जब लीला कर रहा हूं मानव की तो ढूंढ रहे हैं सीता कहां है, उनको पता था कहां है, तो इसीलिए वो आए नहीं। इसलिए आपके मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि जल्दी नहीं आ सकते थे, भगवान सीता का हरण ही नहीं होता। अरे सीता का हरण नहीं होता तो रावण का वध कैसे होता। तो भगवान जल्दी जल्दी आने लगे, लक्ष्मण जी भी यहां से गए। तो अब यहां हमारे हीरो तैयार हो गए, रावण जी पूरा एकदम सन्यासी का वेश बना लिया, जटाएं वटाएं, हाथ में कमंडलू दंड, एक सन्यासी की तरह अब सीता देवी के सामने आए, देवी भिक्षाम देही, भिक्षा मांगने के लिए। और नियम ये है, विशेष करके क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, किसी के लिए भी, कोई घर पर आए तो उसको वापस नहीं भेज सकते। अगर भिक्षा मांगने आया है तो उसको खाली हाथ भेज ही नहीं सकते, ये तो अपमान हो जाएगा अगर कोई आपके घर आकर खाली हाथ चला जाता। आजकल नहीं होता है, वो अलग बात है, आजकल तो हम लोग कुत्ते छोड़ देते हैं, वो अलग चीज है, कलयुग है। हाँ ऐसा ही होता है, हमारे भक्त एक बार ग्रंथ वितरण करने गए, एक घर में घुसे तो कुत्ते छोड़ दिए उनको, है ना। तो आजकल अलग बात है, लेकिन ये समय था, और ज्यादा पहले नहीं, 50-100 साल पहले। घरों में आज भी आप अगर उड़ीसा बंगाल इत्यादि जाइए तो घर ऐसे बने हैं कि घर है, बाहर एक आंगन जैसा रहता है खुला, और वो स्थान होता था हर घर में कि कोई भी राह चलता आकर अगर बैठ गया वहां पर तो घर वाले उसको कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, और अगर सोना भी चाहता है तो सोने की व्यवस्था करते थे, ये नियम था। आजकल तो ऐसा होता नहीं, अनजान व्यक्ति है तो हम लोग तो पहले उसको तुम्हारा आई कार्ड दिखाओ, सिक्योरिटी चेक होता है कि अंदर जा नहीं सकते। तो भिक्षाम देही, मांगने के लिए आ गए भिक्षा। अब सन्यासी हैं, सीता देवी को तो देना है, उनका नियम है, नहीं तो उनके पति का नाम खराब होगा कि रामचंद्र जी की कुटिया में कोई सन्यासी आया उसको कुछ नहीं। तो उन्होंने जो भी फल फूल इत्यादि वहां पर थोड़े फल थे, थोड़ा बहुत कुछ था, वो लिया और देने के लिए आई कि इसको लीजिए। तो सीता को देखकर इतना मोहित हो गया रावण कि भूल गया कि सन्यासी के वेश में है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, काम वासना इतनी तीव्र हो गई। तो देखकर उसने कहा, सुंदरता का गुणगान करने लगा, कहने लगा आप तो रति की तरह हैं, आप तो लक्ष्मी दिखती हैं, कौन आप? तब सीता से पूछा तो सीता को नहीं कि सन्यासी ऐसी बातें, कोई जब हम लोग सन्यासी के पास जाते हैं कोई भक्त का तो आशा होती कुछ भगवान के दो बात बोलेंगे, वो अचानक बोलने लगे वो हीरो की तरह डायलॉग, वो फिल्मों के हीरो की तरह कि आपसे सुंदर कोई नहीं है इत्यादि। तो खैर फिर भी सीता देवी ने कहा आया है तो देना चाहिए। तो सीता देवी ने कहा कि आप थोड़ा सा रुकिए, अभी मेरे पति और मेरे पति के भाई वो आते होंगे, आप थोड़ा रुकिए आपको, लेकिन आप हैं कौन? सीता ने अपना परिचय दे दिया कि दशरथ के पुत्र हैं श्री रामचंद्र, मैं उनकी पत्नी हूं, जनक की पुत्री हूं इत्यादि, हम लोग यहां पर वन में आए हुए हैं, 14 वर्ष का वनवास है हमें, तो हम लोग यहां रुकेंगे। तो रावण ने जब ये सुना, जानता तो था ही रावण तो आया इसीलिए था, लेकिन रावण ने ये सुना तो फिर इन्होंने ये भी पूछ लिया आप कौन हैं। सीता देवी ने ठीक है आपने मेरा परिचय पूछा, आप उसने सोचा बोलेंगे हम कोई वाल्मीकि वाल्मीकि नहीं जो भी बड़े ऋषि हैं कुछ बात होगी। तो फिर रावण ने कहा मैं रावण हूं, अपना परिचय दिया उसने। तो दो यहां पर वर्णन है, एक वर्णन कि जब लक्ष्मण रेखा खींची थी तब कैसे हरण हुआ, और दूसरा वर्णन कि लक्ष्मण रेखा नहीं थी जो वाल्मीकि मुनि और अध्यात्म रामायण में वर्णन है तो तब कैसे हरण हुआ। ये दो तरह के वर्णन हैं, इनको हम लोग अगले रविवार को सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम क्षमा चाहते हैं, हमें थोड़ा जाना है जल्द।